آپ ایس بی ایس اردو سن رہے ہیں۔ نمرتا چندانی یا نمرتا کماری میرپور ماتھیلو سندھ سے تعلق رکھنے والی ایک ہندو لڑکی تھیں، جو کہ بی بی آصفہ ڈینٹل کالج لاڑکانہ میں فائنل ایئر کی طالبہ تھیں۔ نمرتا 16 ستمبر 2019 کو اپنے ہاسٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئی تھیں۔ نمرتا کی پرسرار موت پر جہاں پاکستان میں احتجاج ہوئے، وہیں آسٹریلیا میں بھی اس کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایس پی ایس اردو نے اس سلسلے میں مختلف لوگوں سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو۔ فراز ابڑو آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں مقیم ہیں اور آسٹریلیا سندھی ایسوسی ایشن کے رہنما بھی ہیں۔ فراز اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔
فراز صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے ہلاکت ہوئی ہے میڈیکل کی طالبہ نمرتا چندانی کی، اس کے اوپر اس وقت لوگوں کے اندر، آسٹریلیا کی کمیونٹی کے اندر خاص طور پر کیا سوچ پائی جا رہی ہے؟
ہم آسٹریلیا سندھی ایسوسی ایشن کی طرف سے اس چیز کی سخت کے سخت مذمت کرتے ہیں۔ میں سندھ حکومت سے اپیل کرتا ہوں اس چیز کی شفاف تحقیقات کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو رنگے ہاتھ پکڑا جائے، میڈیا کے سامنے یہ اصلیت لائی جائے کہ کون اس چیز میں ملوث ہے۔ ہم پہلے دن سے ہی ابھی تک کوشش کر رہے ہیں نمرتا کی فیملی سے رابطہ کرنے کی، اور ہمیں یقین دلانے کی جا رہی ہے کہ حکومت نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے 30 دن کا کہ قاتل پکڑے جائیں گے، تو ہم کہہ رہے ہیں اگر اس ڈیڈ لائن میں قاتل پکڑے نہیں گئے تو ہم اب بھی آرگنائز کریں گے پروٹیسٹ جو بھی سڈنی میں ہوگا بھرپور طریقے سے۔ تو ابھی ہم اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، نمرتا کی فیملی کے ساتھ بھی رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کافی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے جو ڈیڈ لائن دی ہے 30 دن کے قاتل پکڑے جائیں گے یہ وہ، تو ہم وہی کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے ہی کچھ ان میں سے ہمیں محسوس ہوا کہ یہ کیس دوسری طرف دھکیلا جا رہا ہے، مطلب پھانسی سوسائڈ کا کیس دیا جا رہا ہے، تو ہم ریڈی ہیں احتجاج کے لیے، بلکہ ہم لوگ ریڈی ہیں، ہم احتجاج کی فوراً کال دیں گے۔
میلبرن میں کاؤنسلیٹ جنرل پاکستان سے جاری میڈیا ریلیز کے مطابق 21 ستمبر کو پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے کاؤنسل جنرل سے ملاقات کی اور نمرتا کیس کے بارے میں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب کراچی میں نمرتا کی موت پر 3 تلوار میں احتجاج بھی کیا گیا، جس میں ہندو برادری کے علاوہ سماجی کارکنان نے بھی شرکت کی۔ اس سلسلے میں ہم نے احتجاج کے مرکزی رہنما جینت کمار سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو۔
جینت، یہ بتائیے گا کہ آخر کیا ضرورت پیش آئی 3 تلوار پر احتجاج کرنے کی؟
سر، سب سے پہلے تو جو ہماری انڈیپینڈنس کے وقت ہماری پاکستان کی مائنورٹی کی پاپولیشن تھی 25%، اور اب صرف ہے 2%۔ ریزن بینگ دا انسیڈنٹس ہیپننگ ٹو مائنورٹیز۔ ریسنٹ انسیڈنٹس پہلے گنوا دوں، پھر میں آپ کو پورا بیک گراؤنڈ دے دوں گا۔ نمرتا کیس، جو ہماری بہن ہاسٹل میں جس کے گریجویشن کا دن تھا مٹھائیاں بانٹ رہی تھی، کوئی ڈپریشن، کوئی ٹینشن نہیں، اس کا قتل کر دیا گیا۔ رجنیش مالی، برتھ ڈے کے دن اس کا، رجنیش مالی عمر کوٹ کا، اس کی برتھ ڈے کے دن اس کی موت ہوئی، اس کا قتل ہوا۔ مونیکا، جو فورس کنورٹ ہوئی واپس ٹھٹھا کی لڑکی، 14 سال کی لڑکی۔ گوٹکی ٹیمپل، وہ ایک بچے جو بچہ، امیچیور بچے نے الزام لگایا، ایکیوز تھا، ناٹ اپروون گلٹی، اس کی وجہ سے اسکول اور ہماری مندر، ہماری عزت، ہماری آبرو جلائی گئی۔ تو سر، مائنورٹیز کے ساتھ ظلم پچھلے بہت سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، بہت سارے کیسز تھے، लेकिन शहूर हिंदू कम्युनिटी में यूथ में अब आया है। प्रेस क्लब हम आते थे, प्रेस क्लब वॉज टोटली इग्नोरेबल क्योंकि गवर्नमेंट को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, प्रेस क्लब इज अ प्रोटेस्ट की एक जगह है। लेकिन जब एक यूथ निकली, एक ऑर्गेनिक बहुत स्पॉन्टेनियस था, वी मार्च्ड फ्रॉम प्रेस क्लब टू तीन तलवार। जब हम तीन तलवार गए वहां पर हमने छः के छः रोड ब्लॉक किए, जब वीआईपी प्रोटोकॉल, जब वीआईपीज ट्रैफिक में फंसे, पूरा शारा फैसल, पूरा सदर ब्लॉक हुआ, तब इनको ख्याल आया कि वी हैव फीलिंग्स और इनके साथ कुछ हुआ है, हिंदू कम्युनिटी के साथ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि इनका सबको दर्द है। फिर तीसरे दिन एक डेलीगेशन बनाई गई जिसमें मैं था, धैवेश कुमार, सुमित राठौड़ और एक बैरिस्टर साहब और एक एडवोकेट साहब और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। हम वहाँ पर मुजाकरात करने गए, हमारी छः डिमांड्स उधर मानी गई। जुडिशियल कमीशन ऑन निमृता केस, जुडिशियल कमीशन ऑन घोटकी केस सेशन जज के तहत वार्डन्स उनको टर्मिनेट कर दिया गया, चौकीदार को टर्मिनेट कर दिया गया, वीसी को यूनिवर्सिटी एक्ट शी विल नॉट इंटरप्ट इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और हाईकोर्ट में हमने ये भी डिमांड की कि हाईकोर्ट पर, हाईकोर्ट से ना इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। उन्होंने बोला कि फैमिली के कॉन्सेंट से होगी। तो यही है कि हमने एक ये भी डिमांड रखी कि 2005 में तसद्दुक जिलानी केस बना था, एक जो कमीशन बना था जो सारे माइनॉरिटीज के राइट्स को देखते थे, तो हमने बोला उनको रीइंप्लीमेंट, उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए। सो सर, पहली बार हिंदू कम्युनिटी में शहूर आया है, जो 2% आवाम रह गई है वो इसलिए रह गई है क्योंकि दे डोंट वॉन्ट टू माइग्रेट टू इंडिया, उनको माइग्रेट नहीं करना इंडिया की तरफ, उनको यहाँ पर जंग लड़नी है, अपनी अपनी जंग। अब वो एक मुहिब वतन शहरी हैं, हम सारे एक यूथ हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के सब गायल है, तो वी वांट टू, वी आर प्राउड पाकिस्तानी हिंदू।
इसी केस पर हमने समाजी कारकुन और कानूनदान जिब्रान नासिर से भी बात की है, वो क्या कहते हैं और इस मामले को कैसे देखते हैं, आइए सुनते हैं।
इस वक्त ये निमरता केस है, उसको हम नहीं कह सकते कि ये कोई रिलीजियस टेंशन का केस है। इट कुड हैव बीन अ क्राइम ऑफ पैशन, ये कोई जज्बात ना आया काम भी हो सकता है जिसके पीछे दो लोगों के आपस का कोई रिश्ता हो सकता है। तो मैं तो जस्ट बिकॉज के जिस लड़की का इंतकाल हुआ है, जिसकी डेड बॉडी मिली है, उसका ताल्लुक एक अकलियत से है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मजहबी तशद्दुद का केस है या इसका ऐसा कोई पहलू है इसमें। देखिए, सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, पहले की मरने वाली एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट से ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस पे एक चीज हुई है तो ऑफकोर्स एक परेशानी का बायस। दूसरा, जो उसके इर्द गिर्द एक कन्फ्यूजन है कि क्या मर्डर है या खुदकुशी है, किसी ने कत्ल किया या खुदकुशी की। और तीसरा कि देखिए, मरने वाला कहाँ से बिलोंग करता है, उसका खानदान क्या करता है, ये बहुत मैटर करता है। आपको एक सिंपल सी मिसाल मैं दूंगा, कराची में जब शाहरुख खान कत्ल केस हुआ था तो कराची के अंदर पापोश में, लियाकतबाद में, लालू खेत में, अजीजाबाद में रोज 12-13 नौजवान मारे जाते थे, मगर हमने इस शहर की अशराफिया को बाहर निकल के कभी मुजाहरा करते नहीं देखा। मगर जब डिफेंस में रहने वाला एक लड़का मारा गया तो सबको ख्याल आ गया कि भाई ये तो कत्ल गारत बहुत गलत चीज है, और मुजाहरे होने लगे और बड़े बड़े का कहते हैं खानदानों से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े बच्चे जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इसी तरीके से जो निमरता केस है, ये पहला केस तो नहीं है कि किसी बच्ची का जिसका ताल्लुक हिंदू बरादरी से हो उसका कत्ल हुआ या उसकी डेड बॉडी मिली हो, मगर वो जिस कास्ट से बिलोंग करती है, इकोनॉमिकली जिस क्लास से बिलोंग करती है, और उस वजह से उससे जो लोग रिलेट कर पाते हैं, उसके लिए जो मुजाहरा करते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। आप किसी बिल्कुल ही छोटे पासमंदा घराने की जिसका ताल्लुक भी लोअर कास्ट से हो, उसकी किसी लड़की के साथ ऐसा हो तो उसके जानने वाले भी ऐसे लोग होंगे जो असर वसूख नहीं रखते होंगे, तो शायद मेलबर्न तक जाके अपनी आवाज ना पहुंचा सकें। तो ये किसका ताल्लुक किसी है कि हम जिससे सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसी को सबसे ज्यादा शोर बताते हैं या मुजाहरा करते हैं या बात करते हैं, ये भी इसके अंदर एक पहलू है। ओवरऑल एक इंसानी हकूक की पामाली या एक क्रिमिनल एक्ट का पहलू तो है, मगर इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर ये जो गूंज जगह जगह जारी है, इसके अंदर देखिए, ये बात मैं करूंगा लोगों को सख्त लगेगी ना, जो कि हम हकीकत से पर्दा छुड़ाते हैं, मगर हर केस में हर विक्टिम की प्रोफाइल मैटर करती है।
या मारने वाले की करती है या मरने वाले की करती है। हम इंसानों को इंसान नहीं जानते, हम इंसानों को रेट करते हैं, कुछ से हाथ मिलाते हैं, कुछ से गले मिलते हैं, कुछ से दूर खड़े होकर बात करते हैं। इसी तरीके से विक्टिम्स का भी यही हाल होता है कि इंसानी फितरत है, ये पाकिस्तान के सिंध के लिए खास नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। मगर जिस चीज़ को आप हाई प्रोफाइल कह रहे हैं, जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कि लोग फॉलो कर रहे हैं, उस केस में आज तक 3 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद एक FIR नहीं कटी।
तो इस खबर में भी कोई सदाकत नहीं कि उम्मत सिंध की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ लोगों को जिनमें उनके वालिद भी और भाई भी शामिल हैं उनको अदालत में तलब किया है?
सिंध हाई कोर्ट ने का तो मुझे पता नहीं, सिंध हुकूमत ने जो खत लिखा था वो लड़काना के डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा था कि आप जुडिशियल इंक्वायरी करें। पहले वो जो DJ साहब थे उन्होंने इनकार कर दिया, ये भी अखबार में रिपोर्ट हुई खबर के जी मैं नहीं चाहता इसको इंक्वायर करना, मैं रिलक्टेंट है वो। फिर उसके बाद मजीद प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने फाइनली इसकी इंक्वायरी शुरू कर ली। अब जब इंक्वायरी शुरू कर ली तो डेफिनेटली वो कलम बंद करने के लिए जो है वो बुलाएंगे, बट बात इतनी सी है अभी तक इस केस की FIR नहीं कट पाई है। हर क्रिमिनल केस में पाकिस्तान के अंदर जितना डिले होता है वाकये में वाकये की FIR में उतना केस कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि जिस पे भी आखिर में इल्जाम लगेगा वो तो कहेगा कि वाकये के बाद सोचा गया, बैठा गया, समझा गया, एक साजिश तैयार की गई कि किस तरह से FIR काटी जाए और किसको मुर्तजा इल्जाम ठहराया जाए। तो ये चीजें भी हमारी नजर में होनी चाहिए। फिल फॉर इस केस की FIR कट जानी चाहिए थी। खानदान अगर नहीं कटवा रहा था तो एक आपके सामने अननेचुरल डेथ है, वो बेशक सुसाइड हो या वो मर्डर हो, पुलिस को FIR काट देनी चाहिए थी। पुलिस अगर सुसाइड की भी FIR काट देती मगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर मर्डर के शवायद मिलते तो जिमनी के अंदर सेक्शन और दफा चेंज हो सकती है, उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ना पुलिस ने अपनी FIR काटी ना खानदान ने अपनी कटाई, जबकि खानदान से बड़ा इस वक्त ओनस में डालूंगा, क्योंकि ये पूरा पहलू कि ये मर्डर हो सकता है और इसके अंदर कोई मैलिस हो सकता है, ये सबसे पहले निमरता के भाई ने आके मीडिया के सामने रखा। उसके बाद उनका FIR ना कटवाना जब पूरी दुनिया के अंदर हर जगह आवाज उठ रही थी, तालिब इल्म सड़कों पर निकल के मुजाहरा कर रहे थे, इसके ऊपर उन्होंने कोई वजाहती बयान नहीं दिया, मेरे ख्याल में देना चाहिए था, उससे बहुत अभाव पैदा हुए हैं। कोई इंसान सुसाइड कर सकता है कि नहीं, मेरे ख्याल में अगर किसी को इस पर कोई राय देनी भी चाहिए तो वो कोई ऐसा इंसान हो जो एक दो नहीं बल्कि काफी अरसे से मरने वाले को जानता हो कि उसकी शख्सियत के बारे में ये कह सके कि क्या हो सकता है कि उन्होंने सुसाइड की हो कि नहीं। यहाँ एक बतौर सामाजिक कारकुन ये केस को फैक्चुअली जो फॉलो कर रहा है, जो मरने वाले को पर्सनली नहीं जानता, मुनासिब ही नहीं है कि मैं इस किस्म का कोई तबसरा करूँ।
जिब्रान बहुत शुक्रिया SBS उर्दू से बात करने के लिए।
बहुत शुक्रिया जी।
आप सुन रहे हैं SBS उर्दू और मैं हूं अफनान मलिक।
अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो SBS रेडियो ऐप पर हमारे मुस्तकिल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए।